ओम शांति। आप सभी का हृदय से पुनः आज के इस अंतिम सत्र में, वैसे इच्छा नहीं हो रही होगी कि इस कॉन्फ्रेंस का अंत हो, राइट? हमारी सेशंस का अंत हो। कौन कौन ऐसा सोचता है कि ये यात्रा चलती रहे? जरा हाथ उठाएंगे। वाह, बहुत सुंदर। ये है ज्ञान की पिपासा, कुछ जानने की, कुछ पाने की, कुछ सीखने की तमन्ना। क्योंकि जो सीखना चाहता है, पाना चाहता है, उसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती और समय की भी सीमा नहीं। वो तो जीवन के अंत तक सीखते रहें, पाते रहें, यही कामना रखते हैं। और ऐसे ही लोग सतत आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी विवेकानंद बने ही इसलिए क्योंकि नरेंद्रनाथ थे, उनके मन में कुछ प्रश्न उठे, प्रश्नों के जब उत्तर मिले स्वामी विवेकानंद बन गए। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती इसीलिए बने क्योंकि मन में कुछ जिज्ञासा के भाव, कुछ प्रश्न पैदा हुए जिज्ञासा के भाव से, और वो स्वामी दयानंद सरस्वती बन गए। सिद्धार्थ के मन में भी कुछ प्रश्न उठे कि व्यक्ति वृद्ध क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, जीवन क्या है, और इन प्रश्नों ने उन्हें बुद्ध बना दिया जब इनका उत्तर उन्हें प्राप्त हुआ। वर्धमान भी महावीर कुछ प्रश्नों के कारण ही बने। आपने भी 3 दिन बहुत कुछ सुना है, पाया है, और निश्चित रूप से मन में जिज्ञासा के प्रश्न भी उत्पन्न हुए होंगे, होने भी चाहिए। क्योंकि जब तक जिज्ञासा व्यक्ति के मन में ना हो, तब तक वो अपने जीवन में उस ज्ञान को, उस सीख को नहीं उतारता। इसलिए आपने जिज्ञासा वश जो प्रश्न भेजे हैं 3 दिनों के इन सत्रों के आधार पर, वो हम तक पहुंचे हैं। तो उन प्रश्नों को भी आपके लेंगे और साथ साथ ये भी चाहेंगे कि सत्र में, क्योंकि अंतिम सत्र है, अंतिम नहीं लेकिन ये यात्रा चलती रहेगी, लेकिन फिर भी आज के इस कॉन्फ्रेंस के अनुसार कहेंगे तो अंतिम सत्र, जिसमें आपके अनुभव भी हम सुनना चाहेंगे। तो जिनके पास भी सुंदर अनुभव है, प्रश्नों के बीच बीच में वो उन्हें हम आमंत्रित करेंगे। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, सामने के सोफ़ेज में जो बैठे हैं सामने माइक रखे जाएंगे। आप 1 मिनट में अपने अनुभव कि आपने क्या पाया वो भी साथ साथ साझा कीजिएगा। तो हम इस प्रश्नोत्तरी सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं। और आज के प्रश्नोत्तरी सत्र के लिए हमारे साथ जो हमारे विद्वान राजयोगी वक्तागण बैठे हुए हैं, लंबे समय के अनुभवी हैं इस ज्ञान मार्ग के, योग के मार्ग के। और प्रथमतः मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय राजयोगिनी सुमन बहन जी का, जो बचपन से ही इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। माता पिता के साथ आप इस ज्ञान में आईं और जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, वैसे ही अपना जीवन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित कर दिया। तब से आप हेडक्वार्टर्स में ही अपनी सुंदर सेवाएं दे रही हैं, देश विदेश की यात्राएं करते हुए सब में इस ज्ञान योग की अलग जगा रही हैं। आप सीनियर राजयोग टीचर हैं, मैनेजमेंट ट्रेनर हैं, और साथ ही हमारे यहाँ जो एजुकेशन विंग है, अलग अलग विंग्स में एक विंग एजुकेशन विंग, जैसे ये बिजनेस विंग है, वैसे आप एजुकेशन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही ज्ञान सरोवर का ये सुंदर परिसर जहाँ आप सब रह रहे हैं, वहाँ के भी प्रोग्राम्स की आप कोऑर्डिनेटर हैं। तो हम अभिनंदन करते हैं आदरणीय सुमन बहन जी का। और साथ ही हमारे साथ है मुंबई से भ्राता एस के सिंह जी, आप भी 23 वर्षों से विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और मूनलाइट इंडस्ट्रीज के आप ओनर हैं। और साथ ही हमारे साथ भ्राता महेश जी भी हैं जो रायपुर से हमारे बीच हैं। आप 3 अलग अलग इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं, प्रोडक्शन और मार्केटिंग का आपको बहुत सुंदर और लंबा अनुभव है, और उससे भी ज़्यादा लंबा अनुभव इस ज्ञान मार्ग का, योग के मार्ग का है। तो ऐसे अनुभवी आज हमारे साथ हैं हमारे प्रश्नों के सुंदर उत्तर देने के लिए। तो चलिए आपके प्रश्नों को लिए हुए मैं शुरुआत करता हूँ आदरणीय सुमन बहन जी से। बहन जी, पहला प्रश्न ये है कि मैं ब्रह्मा कुमारीज में क्यों आऊं। संभवतः मैं अलग अलग स्थानों से जुड़ा हुआ होऊंगा, कई संस्थानों से जुड़ा हुआ होऊंगा, कुछ गुरुओं से जुड़ा हुआ होऊंगा, मैं टेंपल्स में जाता हूं, तीर्थ यात्रा करता हूं, ये सब तो मैं कर ही रहा हूं धर्म के लिए, आध्यात्म के लिए, मैं ब्रह्मा कुमारीज में क्यों आऊं।
ओम शांति। आप सीढ़ी चढ़ के जाना पसंद करेंगे या लिफ्ट से जाना पसंद करेंगे?
बताइए, आवाज नहीं
आप
आई।
आप बताइए। सीढ़ी चढ़ करके लिफ्ट से?
अच्छा, जो सीढ़ी से चढ़ के जाना चाहते हैं वो जरा हाथ उठाएं। और जो लिफ्ट से जाना चाहते हैं?
जो लिफ्ट से जाना चाहते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। जो सीढ़ी पे, सीढ़ी से चढ़ के जाना चाहते हैं, शायद एक्सरसाइज के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से वो सीढ़ी चढ़ के जाना चाहते होंगे। लेकिन टाइम अगर देखा जाए, कौन सा कम लगेगा, लिफ्ट से जाना टाइम कम लगेगा या सीढ़ी से जाना का टाइम कम लगेगा? लिफ्ट से, राइट? तो लिफ्ट से जाना है तो ये है ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़ना। क्यों? क्योंकि यहां निजी ज्ञान दिया जाता है, जो आत्मा का डायरेक्ट कम्युनिकेशन कनेक्शन परमात्मा के साथ हम कैसे कर सकते हैं, तो वो बहुत ही इजी है और मूलतः ज्ञान है। और जो अलग अलग संस्थाओं की बात है, या मैं किसी का खंडन नहीं कर रही हूं, लेकिन फिर यहां जो ज्ञान दिया जाता है, शुरुआत ही यहां से शुरू होता है। फर्स्ट लेसन ही आपका आत्मा का लेसन है, लेकिन दूसरे ज्ञान में वो अंतिम ज्ञान, अंतिम लेसन वो आत्मा का होता है। तो वहां तक कैसे पहुंचे? तो अगर आप कम समय में ज्यादा, अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, ज्यादा आपको अनुभव करना चाहते हैं और इजी तरीके से, यहां कोई भी आपको शारीरिक कोई जो एक्सरसाइज है या फिर जो कोई भी तकलीफें हैं वो नहीं करना होगा, एक टांग पे खड़े हो जाना या फिर कुछ ऐसी कुछ तकलीफ शरीर को देने की जरूरत नहीं है। यहाँ केवल और केवल मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए परमात्मा का जो दिव्य अनुभूति है या परमात्मा का प्यार है, शक्ति है, उसको हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, तो वो सहज रीति से यहाँ बताया जाता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़ेंगे, कम समय में ज्यादा आप प्राप्ति अनुभव कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सुमन बहन जी, संक्षेप में आपने सार तत्व हमें दे दिया है कि क्यों ब्रह्मा कुमारी से जुड़ें। लिफ्ट और सीढ़ी का उदाहरण मुझे लगता है सबको याद रहेगा और सभी लिफ्ट ही पसंद करेंगे, राइट? ब्रदर सिंह जी, आपसे प्रश्न है, धारणाओं पर चलना मुश्किल होता है। धारणाओं का अर्थ है, जैसे खान पान की शुद्धि की बात यहाँ आपने सुनी होगी कि हमारी खान पान में शुद्धता होनी चाहिए, जीवन में यदि हम पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं वो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, इन्हें संक्षेप में हम धारणाएं कहते हैं। तो दिव्य गुणों की भी बात है कि मधुरता है, शालीनता है, सहनशीलता है, ये सब चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कई बार हमें, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इन धारणाओं को कैसे जीवन में लाएं? तो इन्हें कैसे लाएं और इन पे चलना मुश्किल लगता है, कई बार हम इन्हें देखकर अपना कदम पीछे हटा लेते हैं, ये इनका प्रश्न है, कैसे हम अपने आप को इस मार्ग में आगे बढ़ाएं?
ओम शांति। ये जो आपने प्रश्न किया है, आपका अनुभव क्या बोलता है? अभी 3-4 दिन से यहां इन धारणाओं के ऊपर ही पूरे प्रोग्राम्स को आप देख रहे हैं। अच्छा लगा या नहीं लगा, तो मुश्किल क्या है? जब हमें उसका फायदा नजर आने लगता है तो कोई काम मुश्किल नहीं होता है। तो जहां जो धारणा की बातें हैं, जैसे भाई साहब ने डिस्क्राइब किया, खान पान की बातें, नियम मर्यादा की बातें आदि, दिव्य गुणों की धारणा, तो आज हमारे जीवन में क्या चाहिए? दिव्यता चाहिए। हमें अल्टीमेटली एम क्या है? हमें सुख और शांति चाहिए। तो बहुत सुंदर कहा जाता है कि पवित्रता या सत्यता, जैसे आप सभी बिजनेसमैन बैठे हैं, तो मैं इस रूप में कहूंगा कि सत्यता और पवित्रता सुख और शांति की जननी है। हमारे व्यापार में अगर सत्यता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो हम भले धन कमा लेंगे लेकिन हमें वो सुख और शांति नहीं मिलेगा। ठीक बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं? तो मुश्किल है ये धारण करना कि सहज है? कोशिश सिर्फ ये करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने अपने जीवन में किया, कि आपके जैसे हम भी आए थे पहले कॉन्फ्रेंस में, यहां से वो छाप मन पर लेकर गए, और जाने के बाद अपने शहर में जो हमारा ब्रह्मा कुमारी का सेवा केंद्र है, वहां पे जो हमारा रेगुलर पढ़ाई होता है जिसे हम मुरली कहते हैं, उससे हमें रोज नए नए पॉइंट्स मिलते हैं, और बहुत ही सहज थोड़े समय के बाद ऐसा लगा कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। तो मैं यही कहूंगा कि आप उस चीज को फॉलो करें तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, बिल्कुल सहज लगेगा और आप अनुभवी बन जाएंगे। ठीक है, ओम शांति।
बहुत सुंदर। शुरुआत तो जरूर करें। जब हम दूर खड़े होकर देखते हैं तो चीजें कठिन लगती हैं, लेकिन जब नजदीक जाते हैं, करना शुरू करते हैं, तो सचमुच उससे जो प्राप्ति है, उस आनंद को, उस प्राप्ति को हम अनुभव कर पाते हैं। इसीलिए शुरुआत तो हम जरूर करें। प्रथम महेश जी, आपके लिए प्रश्न है। इन्होंने पूछा है कि क्या इस साइकिल से, अर्थात जो जन्म मरण का चक्र है, उससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? क्योंकि मोक्ष की कामना सदियों से हमारे मन में रही है, तो ये प्रश्न उठा है कि क्या इस चक्र से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।
ओम शांति। वैसे तो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती है, हाँ जीवन मुक्ति मिलती है। हम दुख और अशांति के जो कारण हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं, जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते। मैंने अनुभव भी किया है और यहाँ का ज्ञान भी, यहाँ का प्रिंसिपल भी यही बोलता है। क्योंकि अगर हम अच्छा पार्ट बजा रहे हैं, जैसे हम खेल में देखते हैं, क्रिकेट में ही अगर बहुत अच्छा कोई खिलाड़ी है और बहुत अच्छा पार्ट बजा रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, हम विराट कोहली को देख लें या रोहित शर्मा को ही देख लें, और हम कहें कि अभी बहुत अच्छा खेल रहा है, अब उसको खेलना ही नहीं है, तो अगर हम इस सृष्टि पर अच्छा पार्ट बजा रहे हैं और हमने अच्छे कर्म किए हैं, तो हम जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। मुक्ति वो चाहते हैं जो बंधन का अनुभव करते हैं, लेकिन जीवन में रहते हुए अगर मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, तो जो कर्मों की गहन गति का यहाँ ज्ञान सुनाया जाता है, अभी आपने शायद सुना होगा आज के सत्र में, कि जो कर्म के आधार पे ही हम दुख और अशांति का या सुख और शांति का अनुभव करते हैं, तो मुक्ति वो चाहता है जो किसी न किसी प्रकार से परेशान हो, वो चाहता है कि मेरे को यहां से मुक्ति मिले। लेकिन यहां कर्मों की गहन गति का जो ज्ञान दिया जाता है, उसका हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम जीवन में रहते हुए जीवन से मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, यानी दुख और अशांति से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि जैसे रात जाती है तो सुबह आती है, सुबह जाती तो ये सृष्टि चक्र अनादि और अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। ओम शांति।
बहुत शुक्रिया महेश भाई जी। और निश्चित रूप से हम सब तो यही चाहेंगे कि हम सब खेल के मैदान में खेलें, खेल का आनंद अपना होता है। कौन कौन अपने घर में ही केवल बैठे रहना चाहेंगे? केवल घर में आपको सारी साल बिठा के रखा जाए, बैठेंगे नहीं ना? आप निकलेंगे, आप बिजनेस करेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, इसमें आनंद है। तो ईश्वर ने यही ज्ञान दिया और महेश भाई जी ने भी हमें यही स्पष्ट किया कि खेलने में आनंद है, कर्म क्षेत्र में आनंद है, और बाकी आराम के लिए कुछ वक्त तो ईश्वर हमें उस मुक्ति धाम में जरूर लेके चलते हैं। अब बात ईश्वर की आई है सुमन बहन जी, इनका प्रश्न ये है कि आपने बताया कि शिव परमात्मा है, तो महादेव कौन है? क्या महादेव और शिव एक ही हैं? और साथ ही इन्होंने दृष्टि की भी बात पूछी है कि दृष्टि क्या है और इसका महत्व क्या है। चाहूंगा इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप हमें दें।
दृष्टि क्या है, दृष्टि का महत्व क्या है?
ओम शांति। पहले वो प्रश्न ले लूंगी, दृष्टि क्या है। वैसे तो कहा जाता है जो हम हमारे शरीर से अलग अलग जगह से हमारी शक्तियां प्रवाह होता है, तो जैसे सबसे पहले तो पांव है, तो इसलिए कहते हैं कि महात्माएं महात्माओं के लिए कि हमारे घर में आइए, अपना पांव रखिए, शुद्ध कर लीजिए अपना घर। तो क्यों महात्माओं को हम घर में बुलाना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं पता है उनके पैर लगते ही वहां का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा या पावरफुल हो जाएगा। तो एक है हम हमारी जो वाइब्रेशंस है, आत्मा की जो शक्तियां हैं, तो पांव से भी हम हमारे वाइब्रेशंस फैला सकते, मतलब वो प्रभाव होता है। और दूसरे हैं हाथ, तो इसीलिए हाथों से कहते हैं कि आशीर्वाद दीजिए, तो हम बड़ों के या फिर संतों के, साधुओं के, हमारे घर के जो बड़े हैं उनसे आशीर्वाद पाते हैं, तो कहते हैं कि आप अपना सिर आपका हाथ अपने सिर पर रखिए। तो यहां से भी हम अपने वाइब्रेशंस चल जाता है। और फिर तीसरा है आंख, तो हमारे दृष्टि से, तो इसीलिए क्यों दृष्टि से, और दृष्टि से और ही पावरफुल हम अपने वाइब्रेशंस फैला सकते हैं, क्यों? आत्मा का बहुत नजदीक ऑर्गन है आंख, और इसीलिए कहते हैं कि जब आंखों को देखते हैं तो पता चल जाता है उनका मूड कैसा है ना, क्या चल रहा है उनके मन में, पता चल जाता है आंखों को देखते ही पता चल जाता है। तो इसीलिए यहां कहा जाता है कोई भी पांव ना छुए, क्योंकि एक सम्मान है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट में रहते हुए दूसरों को भी हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, आप भी एक आत्मा है, तो इसलिए वहां समानता आ गई। तो यहां कोई गुरु नहीं है, देखते हैं यहां इस संस्था में हाँ समर्पित भाई बहने हैं, लेकिन कोई गुरुडम नहीं है यहां, इसलिए यहां पांव छूने के लिए हम कहते हैं नहीं पांव छूना है, क्योंकि यहां कोई भी नीचा और कोई भी ऊंचा नहीं है, सभी हम आत्माएं हैं, उस परमपिता परमात्मा के हम सभी संतान हैं। तो इसीलिए हम दृष्टि से दृष्टि देने की प्रक्रिया क्यों है यहां, क्योंकि दृष्टि को अगर परिवर्तन करेंगे तो फिर सब कुछ परिवर्तन करना बहुत इजी है। अगर हम एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखना प्रैक्टिस करेंगे तो, और बाकी जो धारणा की बात कर रहे थे, तो बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत देह भान बहुत ज्यादा हो गया है ना, तो उसको देह भान को भूल करके अपने आप को आत्मा समझते हुए दूसरों को हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो वो आत्मा की शक्ति का संचार होता है दृष्टि के द्वारा। तो इसीलिए यहां दृष्टि का महत्व बताया जाता है। जब भी टोली दे लेते हैं या फिर ओम शांति करते हैं, ग्रीट करते हैं, तो फिर दृष्टि का लेन देन करते हैं, क्योंकि दृष्टि में वो पवित्रता हम धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न ये है, शिव और महादेव एक है या अलग अलग है? वैसे परमात्मा को गॉड, इंग्लिश में गॉड कहते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, स्थापना, पालना और विनाश करने वाला भगवान है, परमात्मा है कहते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा विनाश माना जाता है। तो इसलिए शंकर जी को महादेव भी कहते हैं, देवों का देव महादेव शंकर जी हैं। तो ये शिव और शंकर अलग अलग है। वैसे तो अगर देखते हैं महादेव या शंकर जी किस पोस्चर में वो बैठे हुए होते हैं, किस पोजीशन में बैठे हुए होते हैं, वो तपस्या करते हुए नजर आते हैं। अगर वो खुद भगवान है तो वो किसकी तपस्या कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं? भगवान वो है जो सर्वोच्च है, जिनको कोई भी माता पिता नहीं है, जिनको कोई टीचर और सदगुरु नहीं है, उनसे ऊपर, परमात्मा से ऊपर कोई और हो नहीं सकता, तो वो है परमात्मा। तो लेकिन महादेव हमेशा तपस्या में बताते हैं, वो परमात्मा को याद कर रहे हैं ताकि उनके अंदर वो शक्ति अनुभव करते हुए वो तीसरा नेत्र जब खोलते हैं तो विनाश कर सके। विनाश यहाँ सृष्टि का विनाश नहीं, संसार का विनाश नहीं, हम सभी वैसे माना जाए शंकर है। क्योंकि अगर हम अपने तीसरा नेत्र कौन सा है हमारा? आत्मिक स्मृति का नेत्र। जब मैं अपने आप को आत्मा समझती हूँ, वो तीसरा नेत्र अवेयरनेस, स्मृति जागृत हो गया। जब मैं अपने आप को आत्मा समझती हूँ तो आत्मा के अंदर जो भी मेरे कमी कमजोरियां हैं उसको मैं भस्म कर सकती हूँ। तो इसका यही मतलब है तीसरा आंख खोलना। तो इसलिए शिव जी, शिव और महादेव वो अलग अलग है। शिव निराकार है और महादेव देहधारी है। महादेव शंकर जी विनाशकारी है लेकिन परमात्मा कल्याणकारी है।
बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है स्पष्ट हो गया होगा। जिनका प्रश्न था वो जरा हाथ उठाएं। ओके, आपको स्पष्ट हुआ ये? बहुत सुंदर। साथ ही जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि अनुभव भी आपको साझा करना है, तो जिन्हें भी अनुभव साझा करने हैं सामने, मैं चाहूंगा कि, अच्छा, कॉर्डलेस रखा हुआ है तो वो भी अपना हाथ उठाएंगे और एक मिनट में अपना अनुभव साझा करेंगे। हाथ उठा के रखेंगे जिन्हें अपना अनुभव साझा करना है। अच्छा, आगे आ जाएंगे, आगे आके आप बैठ सकते हैं। तब तक मैं एक दूसरा प्रश्न ले रहा हूं, जिन्हें भी अनुभव साझा करने हैं प्लीज फ्रंट के सोफाज खाली रखे गए हैं, आप आ सकते हैं जी। तब तक मैं जी एक अनुभव, हाँ जी, माइक आपके पास है, अपना परिचय देंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे।
ये मराठीत बोलतो ताले,
यदि हिंदी बोले तो अच्छा लगेगा सभी को।
अच्छा, मैं डॉक्टर खंडकरी, शिरपुर तालुका होरांते।
माइक पास में लीजिएगा प्लीज।
मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। मैं 100-150 पेशेंट की ओपीडी थी मेरी, 6 बेड का हॉस्पिटल था। हाँ, 1990 में मेरे एक दोस्त है राजू शर्मा करके चोपड़े में, वो शिव बाबा का सेंटर के, उनका बहुत संबंध था। वो हर रोज वहां से केली के इसमें से एक क्विंटल को एक रुपया निकाल के देता था। वैसे मेरी केली वगैरह उसके तरफ जाती थी। उसने मुझे बोला कि एक बार आप माउंट आबू जाके आना बोला। तो उनका जब आपका ये नियोजन था, वैसा मेरे को हर साल उसने बोला कि आप माउंट आबू जाके आओ, आपका नाम दिया है। पर आदमी क्या रहता है, संसार में लोभी रहता है। मेरी प्रैक्टिस बहुत थी, मैं 20-22 घंटा प्रैक्टिस करता था। दिया उसका भला, नहीं दिया उसका भला। तो ऐसा करने में मैं खुद के तबीयत की तरफ ख्याल नहीं दिया। फिर 1995 में मुझे अपने आयुर्वेद में विषम ज्वर बोलते हैं, अपने एलोपैथी में उसको टाइफाइड बोलते हैं, मुझे 8 दिन टेम्परेचर रहा। वो टेम्परेचर में मैं मेरा 22 घंटा काम कर रहे, पेशेंट आते रह रहे, मैं मिसेस को भी ट्रेन किया, वो मेरे को सब डिलीवरी इसके, और मेरी बच्ची वो टाइम में MBBS हो गई थी। वो होने के बाद उसको इंटर्नशिप के लिए उधर बुलाया, वो चोपड़ा जाती थी, दिन को मेरे पेशेंट तपाती थी, मैं बैठ के सही करता, मुझे रूमेटाइड आर्थराइटिस वो टाइम में हुआ, जिसको विषमज्वर बोलते हैं, विषमज्वर से टाइफाइड हुआ, मुझे अपन अपने एलोपैथी में बोलते हैं। फिर मेरे को ये ज्वाइंट पेन हुआ, इतना ज्वाइंट पेन हुआ कि मैं लिखता नहीं सकता था, चलता था तो ऐसा मेरे को दो जन पकड़ते थे, पर मैं नीचे आके ओपीडी में, एक बार सुबह 8 बजे आए तो दोपहर को 1 बजे जाता हूँ, 4 बजे आए तो रात को 10 बजे जाता था। ऐसे इसमें मैं आयुर्वेदिक पोस्ट किया, आयुर्वेदिक विथ एलोपैथिक MFM कोर्स किया है, मैं रिसर्च के भी मेरे को पोस्ट मिली थी, पर मैं पोद्दार को कॉलेज को छोड़ के मैं प्रैक्टिस में जल्दी आ गया।
फिर शॉर्ट में
3 सितंबर 1969 में मैं प्रैक्टिस शुरू किया। आज मेरी उम्र 80 है, तो वो टाइम में मुझे याद आया कि अपन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करके पंचकर्म करके, मैंने वो पथ्य पाला 6 महीने, वो मैं पथ्य पाल के फिर मैंने एक संकल्प किया वो टाइम में कि जब मेरे को इतनी तकलीफ थी, मैं वो संकल्प करके योगा किया, मेडिटेशन चालू किया, 6 महीने में ऑल राइट हो गया। उस अभी मैं जब 25-30 साल से मैं वो संकल्प से, योगा से और मेडिटेशन से मैं आज खड़ा हूं। तो इसीलिए मैं आज खड़ा हूं कि मैं जनरल प्रैक्टिस देखता हूं। हमारे जब ओपीडी में पेशेंट आता है तो हम उसकी जो फैमिलियर पेशेंट रहते हैं उसके 50% हमारा डायग्नोसिस हो जाता है, 100 में से 70 पेशेंट साइकोलॉजी रहते हैं, इसीलिए अपने को मेडिटेशन होना। आजार हुआ तो उसका इलाज होता है, बीमारी हुआ तो कैंसर होता है, गांठ निकाल के फेंकी जाती है, पर नहीं हुआ, भूत हुआ शरीर में, तो उसको मेडिटेशन सिवा कोई पर्याय नहीं।
बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजाए डॉक्टर साहब के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
आहार विहार निद्रा, आहार विहार निद्रा इसका नियोजन करना, मेडिटेशन करना आज के काल में जरूर है, यही आपको सबको प्रार्थना करता
हूं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा आए, 1 मिनट में अपना अनुभव साझा करेंगे और यहां आपने क्या एक्सपीरियंस किया आप वो साझा करेंगे, जो भी सेशंस आपने सुने, मेडिटेशन आपने किया, यहां के वातावरण का 1 मिनट में अपना अनुभव देंगे।
आप देख पाएंगे मुझे? हाँ जी। ओम शांति। मेरा नाम निक्की चुग है और मैं अमृतसर फिक्की फ्लो चैप्टर की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं। जहाँ मैं एक बड़ा क्लियरली मानना चाहूँगी कि मैं बहुत स्ट्रांग हेडेड हूँ, कोई भी विचारधारा अपनाने के लिए मुझे बहुत समय लगता है। तो जब मैं यहाँ आई, मेरे दिमाग में बहुत एक तरह का विचार मंथन चल रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं क्यों हूँ यहाँ पर। उसमें कुछ एक चीज़ें जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय लगी इन 4 दिनों में जो मैंने सीखा है, सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ तक अब तक की जिंदगी में मुझे सिर्फ एक शक्तिहीन मानव बना के रखा, मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं तो एक कठपुतली हूँ, कोई सुप्रीम पावर है, मेरे अंदर कोई पावर नहीं है, जो होना है वही होना है। सिर्फ अकेली एक मात्र ऐसी जगह जहाँ पर आकर मैंने महसूस किया कि मैं भी शक्ति हूँ, वो ये जगह है, मुझे अपना रोल समझ में आया। दूसरी चीज, यहाँ दृष्टिकोण बदल गया। मैं नहीं जानती कि मैं BK परिवार के साथ कितना चल पाऊंगी, मैं संकल्प तो जरूर करूंगी, लेकिन जैसे मैंने बताया मैं स्ट्रांग हेडेड हूं, हो सकता है कुछ समय लूं, लेकिन मेरा दृष्टिकोण बहुत बदल गया जिंदगी को देखने का, खुद को समझने का। तीसरी चीज थी रेलेवेंस। जितने भी आज तक हमने धर्म से संबंधित समझ लीजिए, मिथोलॉजी समझ लीजिए, लाइफस्टाइल समझ लीजिए, उन सब में आपको कभी भी रेलेवेंस नहीं दिखता। आज के समय में जैसे हमारे आज सुबह लेक्चर में हमने ये बात सुनी थी, गॉड फियरिंग नहीं, गॉड लविंग बनिए। तो मतलब ये है कि आपको सच में डर लगता है, और ये रेलेवेंस आपको यहाँ पर आके समझ में आता है, आज की समस्याएं और उनका समाधान, वो रेलेवेंस मुझे समझ में आया। आखिर में बोलूंगी, कि जिस तरह से शब्दों के मीनिंग बदल गए, अब तक जो शब्द मेरे दिमाग में तो थे लेकिन उनका कंटेक्स्ट मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था इस शब्द को किस स्थिति में किस तरीके से मैंने इस्तेमाल करना है, लेकिन इस जगह ने मुझे वो क्लैरिटी दी है, वो ज्ञान दिया है। मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि मैं इन सबको प्रैक्टिकली यूज करूं। थैंक यू सो मच।
थैंक यू वेरी मच। चलिए पुनः आपके प्रश्नों की ओर चलते हैं। अपने अनुभव एक मिनट का तैयार करके रखिएगा। जो भी सामने बैठे हैं उनसे अनुरोध है, मैं ब्रदर सिंह जी आपकी ओर आ रहा हूं। कईयों का ये प्रश्न होगा, लेकिन एक ने भेजा है कि हम अपने घर परिवार में भी रहें, व्यापार भी करें और इस आध्यात्मिक मार्ग में भी इतनी सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो घर में रहते हुए जो हमारे घर के सदस्य अध्यात्म को नहीं मानते हैं, खान पान की उनकी आदतें अलग हैं, वहाँ गाली गलौचें होती रहती हैं और अलग अलग प्रकार की चीज़ें, तो कैसे हम वहाँ रह करके दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं? क्या यह संभव है? क्योंकि होता यह है कि वहाँ के जाते हैं तो वहाँ के हो जाते हैं, यहाँ आते हैं तो लगता है कि यही अच्छा है। कैसे उस चीज़ को बैलेंस में लाएं, जीवन में लाएं?
ओम शांति। ये बड़ा सुंदर प्रश्न है, क्योंकि जब हम भी यहां आए थे तो मेरे अंदर भी यही क्वेश्चन था। तो चूंकि मेरा इलेक्ट्रिकल का फील्ड है, तो मैंने एक इलेक्ट्रिकल एग्जाम्पल, जैसे आज ये इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होता है, ये एग्जाम्पल मुझे टच किया और मुझे इंस्पायर किया। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी का, आप में से बहुत लोग होंगे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड से, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप कंडक्टर को रोटेट करते हैं तो उस कंडक्टर में सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो मेरे मन में ये आया, अब यहां कंडक्टर कौन है? सभी आत्माएं। चाहे हम ज्ञान में चलते हैं या हमारे कार्य स्थल पे जो ब्रह्मा कुमारी के या परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता है, चाहे कोई अमीर है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, सभी आत्मा है। ये तो क्लियर है ना, मानो वो सभी कंडक्टर है। तो मुझे ये लगा कि जब हम अपने कार्यस्थल को या हमारे परिवार में जहां हम रहते हैं, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड, माना स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट जो राजयोग से तैयार होता है, वो अगर हम क्रिएट करते हैं, तो उसमें आने वाला हर व्यक्ति को अंदर ये प्रेरणा आएगी और उसके अंदर परिवर्तन आएगा। तो हमने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। हम नॉर्मली आदमी करता क्या है, थोड़ा मैंने सुना और फटाक से दूसरे से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं। कहा जाता है स्व परिवर्तन से होता है, स्वचिंतन से होता है स्व परिवर्तन, और स्व परिवर्तन से होता है विश्व परिवर्तन। तो जब हमारे सोच बदलेंगे, हमारे अंदर वो कैपेसिटी आएगी, वो इम्पावरमेंट आएगा, तो ऑटोमेटिक उसका प्रभाव आप देखेंगे पड़ेगा। और ये हमारे पर्सनल जीवन में ये हुआ है, इस आधार से मैं आपको बता रहा हूं। ओम शांति।
बहुत सुंदर, तालियों की गड़गड़ाहट से पता चलेगा कि हाँ आपको कैसा लगा, ये हृदय में उतरा और सचमुच ये एप्लीकेबल है या नहीं। हमें करना है और देखना है कि सचमुच इसका रिजल्ट कैसा है, क्योंकि हमारे सामने जो बैठकर इन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं ये उनके जीवन के अपने अनुभव हैं। और एक प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, लेकिन ऐसे हजारों लाखों हैं जिनके जीवन के यही अनुभव हैं। भ्राता महेश जी, आपसे प्रश्न है, ये प्रैक्टिकली जीवन में होता रहता है और आपके जीवन में अनुभव में हो सकता है कि जिन अपनों ने आपको धोखा दिया है उनसे हम अच्छे संबंध कैसे रख सकते हैं, उन्हें शुभ भावना कैसे दे सकते हैं? इसमें अपने में हमारे संबंधी भी हो सकते हैं और साथ ही जिनके साथ आप कार्य क्षेत्र में हैं, आपके साथ भी लगभग 250 एम्प्लॉयज हैं, तो कैसे जिन्होंने धोखा दिया, जो आपके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, अब उनके साथ हम कैसे चलें, कैसे उनके लिए अपनी भावनाएं सुंदर रखें।
ओम शांति। इस प्रश्न से मेरे को एक अपनी घटना याद आ गई। जब मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा था 1990 में, तो उस समय मेरी एक छोटी सी किराने की दुकान हुआ करती थी, जिसको मैं सुबह 6 बजे से चालू करता था और रात को 10 बजे बंद करना होता था। तो जब ब्रह्मा कुमारी संस्था में आया तो मेरे को लगा कि अब मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में मैं रेगुलर कैसे जाऊं, क्योंकि उनका जो डेली का क्लासेस होता है, कोर्स तो मैंने कर लिया बीच में समय निकाल कर, लेकिन डेली क्लासेस में कैसे जाएं, और लगता था कि वहां से हमको जो प्राप्ति हुई है तो उसका मैं डेली लाभ कैसे लूं। जीवन में बहुत चेंज आया, हमारे बोल चाल, खान पान, रहन सहन, सोच में बहुत फर्क आया। तो उस समय हमारे रिलेशन में जो हमारे चाचा के लड़के मेरे साथ ही रहते थे बिजनेस में, तो मैंने कहा मुझे इसको चेंज करना है, क्योंकि सुबह 6 बजे आकर रात को 10 बजे जाकर मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था का लाभ नहीं ले पाऊंगा, ना किसी और को दे पाऊंगा, क्योंकि परमात्म सुख का हमने अनुभव किया था। तो उन्होंने ये कहा कि ये दुकान अगर आप रख लेते हो, हम अलग हो जाते हैं, आप अपने हिसाब से चलाओ, क्योंकि हमने पहले ऐसा कोशिश किया कि भाई सुबह 6 की जगह 8 बजे खोल लें, क्लासेस करने के बाद ब्रह्मा कुमारी संस्था से होके आए उसके बाद चालू कर लें। तो उन्होंने कहा भाई इसका गुडविल आपको देना पड़ेगा अगर दुकान आप रखते हो तो। फिर हमने क्या, बिना, हमने दुकान ही उनको दे दी बिना किसी गुडविल के या किसी चीज के। तो हमने उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखी, हमने, क्योंकि बहुत अच्छी चलती थी दुकान, उससे पूरा परिवार चलता था, बाकी सारे लोग हमारे यहाँ जितने भी थे ना सर्विस क्लास के लोग थे। बिजनेस मैंने ही चालू किया था और वहां से ही स्टार्ट हुआ था बिजनेस हमारा। फिर मैंने देखा मैं इस बिजनेस में रहकर, क्योंकि सुबह से ही ना तंबाकू गुड़ाखू लेने वाले, फिर अंडा बीड़ी सिगरेट दो, तो मेरे को वैसे ही अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा क्योंकि हमने हमारे बड़ों से भी सीखा था कि हमको बिजनेस ऐसा चॉइस करना चाहिए जिससे हमारे संस्कार बिगड़े नहीं, बिजनेस ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे संस्कार में प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो फिर मैंने वो बिजनेस को छोड़ दिया, पूरा का पूरा बिजनेस उनको दे दिया और मैंने ट्रेडिंग का काम चालू किया। ट्रेडिंग के फिर मेरे को और ज्यादा समय चाहिए था ईश्वरी सेवाओं के लिए और ज्ञान सुनने के लिए, मेडिटेशन का, क्योंकि मेडिटेशन से बहुत गहरे गहरे अनुभव किए। जैसे हम भक्ति में गाते हैं ना, तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें हो, या भगवान के लिए कहते हैं वो शांति का सागर है, सुख का सागर है, तो सुख के सागर का सुख क्या होता है, वो आनंद के सागर का आनंद क्या होता है, वो हमने यहाँ प्रैक्टिकल में अनुभव किया। तो क्या हुआ कि हम देखे धीरे धीरे हमारी प्रोग्रेस होती गई और जो हमसे गुडविल है पूरी भरी पुराई दुकान दिए थे वो धीरे धीरे पीछे चले गए, लेकिन हमारी शुभ भावनाएं थी उनसे। बाद में हमने, जब हमारा बहुत आगे बढ़ गया तो वो लोग बिल्कुल नीचे आ गए थे, उसके बाद ही हम लोगों ने फिर उनको और सपोर्ट किया, आज वो भी टॉप पोजीशन पे हैं, क्योंकि हमने उनके प्रति भावना ही नहीं बिगाड़ी। अच्छा, मेरे को ये लगता है जब बंटवारा होता है, अगर हम उस चीज के पीछे पड़ जाएं कि ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, तो वो आप अपना समय, आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म होती है। अगर आप अपने क्रम में, चाहे कितना भी नुकसान हुआ हो, किसी ने किसी को धोखा दिया हो आपको, लेकिन आप अपने दूसरे काम में लग जाओ, उसको भूल जाओ, तो आपकी उन्नति आगे होती जाएगी, क्योंकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, है ना। अगर हम उसको लेने के चक्कर में पड़ जाते तो जो है हमारे से वो भी चला जाता है। इसलिए हमको अपने शुभ भावनाएं रख के उनके प्रति शुभ भावनाएं रखनी चाहिए, हमारी प्रोग्रेस फिर हो जाती है।
बहुत ही सुंदर अनुभव युक्त जवाब, सचमुच टिट फॉर टैट नहीं, लेकिन यदि हमारी भावनाएं सुंदर है और शुभ है तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम आगे ही बढ़ते हैं। देने वाला कभी भी पीछे नहीं रहता, लेकिन ईश्वर उसे आगे करते हैं, और यही कारण है कि आज एक दो नहीं, आप 3 इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन हैं। तो इनके लिए जोरदार तालियां। ये अपनी शुभ भावना से, बदले की भावना नहीं लेकिन शुभ भावना रखते हुए उन्हें भी मदद की जिन्होंने इन्हें गिराने की कोशिश की और सचमुच एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। बहुत सारे प्रश्न सुमन बहन जी आए हैं मेडिटेशन से रिलेटेड, कि मेडिटेशन करने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मन एकाग्र नहीं होता, मन भटकता है। 4 बजे वैसे अमृत वेले आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ जैसे ही आंखें बंद करके योग करते हैं तो और विचार आने लगते हैं, एकाग्र नहीं हो पाता है मन। तो ये योग से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं, चाहूंगा कि इस पर प्रकाश डालें।
मेडिटेशन करने के लिए तो आप सभी यहाँ आए हुए हैं, वही मेन बात है। तो सबसे पहली बात है, मेडिटेशन में बैठने के लिए सबसे पहली बात जरूरत है वो है इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती बैठ रहे हैं, तो वो उसका आनंद हम नहीं ले सकते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए कि भगवान को याद करने के लिए मंदिर में भी जाते हैं या कोई जाते हैं, तो फिर कितना मिनट हम भगवान को याद कर सकते हैं? वही 3 घंटे की मूवी आप अच्छी तरह हम एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट उसमें है, तो इसीलिए आनंद उसमें लुटा रहे हैं। लेकिन फिर भगवान को याद करने के में उसमें आप आनंद अनुभव नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो कनेक्शन नहीं जुट रहा है। कनेक्शन क्यों नहीं जुट रहा है? वहां संबंध नहीं है। संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि वहां स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है। तो आपने मेडिटेशन में ये क्लासेस में ये सुना होगा, ये 4 आधार के आधार से हम भगवान को या किसी को भी याद करते हैं। 1 है परिचय, 2 है संबंध, 3 है स्नेह और 4 है प्राप्ति, है ना? इन 4 को आधार बना करके जब हम परमात्मा को याद करते हैं, 1 है परिचय की आवश्यकता है कि परिचय के बिना परमात्मा को हम याद नहीं कर सकते, यथार्थ परिचय की जरूरत है। और 2 है संबंध। यहां बैठे हुए हैं आप किसको याद कर रहे हैं? भले यहां बैठे हुए हैं किन किन लोगों को याद कर रहे हैं? जिनके साथ आपका संबंध है। संबंध के बिना हम किसी को याद कर नहीं सकते हैं, है ना? तो इसलिए परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। केवल भगवान और भगत का संबंध नहीं, सर्व संबंध, मात पिता, बंधु, सखा, टीचर, सद्गुरु, सब संबंध जब जोड़ेंगे तो फिर भावनाएं जुड़ती है, फीलिंग्स जुड़ती है। जहां फीलिंग्स जुड़ती है तो वहां बहुत इजीली हम मतलब वहां मेहनत नहीं लगता है परमात्मा को याद करना। और 3री बात है प्रेम। परमात्मा तो प्रेम का सागर है, लेकिन मेरा प्यार परमात्मा के प्रति कितना है? जितना हम प्यार बढ़ाते जाएंगे परमात्मा के प्रति, वो फिर एकाग्रता बढ़ता जाएगा। जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे सूरज के और पेपर के बीच में, तो फिर वो जो फोकल पॉइंट पर पेपर रखेंगे तो वो जल जाएगा, लेकिन वो उस पेपर को हजारों सालों तक सूरज के नीचे रखेंगे वो जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो फोकस नहीं हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है ना? ऐसे ही एकाग्रता अगर होना है तो फिर स्नेह की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। इसीलिए राजयोग को कहते हैं प्रेम पूर्वक याद, लवफुल रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड इज राजयोग, दैट्स इट। प्रेम भी चाहिए, प्रेम जहां है वहां फोकस या कॉन्सेंट्रेट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो इसीलिए अब जहां भी मन भटक रहा है तो समझ लेना चाहिए कि मुझे मेरे अंदर प्रेम की कमी है, तो फिर वो प्रेम जागृत करेंगे। और मेथड आपको सिखाया गया है, मेथड क्या है? अपने आप को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना। उस मेथड को फॉलो करेंगे तो जरूर आप उसका अनुभव कर सकते हैं।
बहुत सुंदर। किस किस को योग में बहुत आनंद आया है? यहां जरा हाथ उठाए। बहुत आनंद, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सभी को, केवल कुछ होंगे जिन्हें एकाग्रता संभवतः नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करते करते। हम रोटी भी बनाना सीखते हैं तो पहले ही दिन गोल रोटी, जिसने पहली बार रोटी बनाई और पहले ही दिन गोल बना दी, वो जरा हाथ उठाए। कोई नहीं रोटी भी बनाना एक छोटी सी बात है, बनाते बनाते ही वो गोल होती है, राइट। और हम यह सोचते हैं कि पहले दिन मैं रोटी बनाऊं और गोल हो जाए, पहले ही दिन रोटी बनाऊं अर्थात मेडिटेशन करूं और मन एकदम एकाग्र हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करते करते ये जरूर संभव होता है। बहन जी, दूसरा भी प्रश्न था कि आंखें बंद करके करते हैं तो कई बार अच्छा लगता है, लेकिन आंखें खोलकर यहां योग करना सिखाया जाता है, तो आंखें खोल के करें या बंद करके योग करें?
यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आंखें खोल के रखना चाहिए या बंद करके रखना चाहिए, लेकिन मेन फोकस हमारा मन के ऊपर है, मन फोकस रहना चाहिए। लेकिन प्रेफरेबली हम ये कहते हैं ओपन आई, आंखें खोल करके रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये राजयोग संन्यास योग नहीं है, कर्म योग है। तो भले आप कुछ मिनटों के लिए, 20 मिनट्स आधे घंटे के लिए आप बैठ करके मेडिटेशन करेंगे, लेकिन फिर सारे दिन में कर्म करते समय भी परमात्मा को आप याद कर सकते हैं, क्योंकि संबंध तो जुट गया ना। संबंध जुट जाने के बाद कर्म करते समय भी आप परमात्मा को याद कर सकते हैं। और कर्म कैसे करेंगे? आंख खोल के रखना पड़ेगा कर्म करते समय, ड्राइव कर रहे हैं या चल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आंखें को तो खुला रखना पड़ेगा। तो इसीलिए जब बैठ करके आप प्रैक्टिस करेंगे ओपन आई, आंखें खुला रख करके प्रैक्टिस करेंगे, तो कर्म योग करना आपके लिए इजी हो जाएगा। नहीं तो फिर वो लिमिटेशन हो जाएगा, नहीं जब मैं बैठूंगी आंख बंद करूंगी लाल लाइट होगा म्यूजिक होगा तभी मैं मेडिटेशन कर सकती हूं, नहीं ये लिमिटेशन हमें नहीं रखना है। हाँ, इनिशियली थोड़ा हेल्प के लिए ये सब सपोर्ट हमें जरूरत होगा, कमेंट्री या फिर सॉन्ग्स या फिर कोई कंडक्ट कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बाद में हमें इंडिपेंडेंट होना होगा ताकि फिर मेरा रिलेशनशिप भगवान के साथ पर्सनल हो जाए। कोई ऐसे किसी के कमेंट्री के आधार से मेरा रिलेशनशिप नहीं हो सकता है भगवान के साथ। हाँ, स्टार्टिंग में सपोर्ट ले लिया, लेकिन इंडिपेंडेंटली मेरे संबंध जुटने के लिए फिर ओपन आई मेडिटेशन बहुत ही मददगार रहेगा, तो इसीलिए हम ये सजेस्ट करते हैं यहाँ
जी। और अनुभव के लिए भी तैयार रहे।
इसमें मेरा भी थोड़ा एक अनुभव है कि अगर हम आंख बंद करके बैठते हैं, जैसे इनिशियली बहन जी ने तो बताया कि हम कर्म करते चलते फिरते योग करें इसलिए आंख खोलकर ही करना चाहिए, लेकिन मेरा अनुभव है जैसे अपन योग में समय निकालकर बैठते भी हैं और आंख बंद करते हैं ना तो सारी दुनिया सामने आती है, और आंख खोलकर करते हैं तो हमको सिर्फ एकाग्र करना रहता है जो हमको आसपास आंखों से दिख रहा है। तो आंख खोलकर योग करना ज्यादा इजी है बजाय आंख बंद करके।
जी जी, जो अनुभव साझा कर रहे हैं हमारे भाई बहने, उनसे अनुरोध रहेगा कि संक्षेप में एक मिनट में अपने परिचय के साथ यहाँ का अनुभव साझा करेंगे। जी,
मैं पिंकी कुंद्रा फ्रॉम फिक्की फ्लो अमृतसर। मुझे स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल समझ नहीं आती, आई बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। जो मैंने यहाँ अनुभव किया है मैं वो आपको बताऊंगी। जब हम यहाँ शांतिवन आए, हम गए गुलजार दादी के कक्ष में, वहाँ नीलू बहन को मिले, बहुत मजा आया। इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी कि आदमी, और कई प्रश्न हमने पूछे उनके, हमें बहुत ही स्नेहपूर्वक आंसर मिले, बड़ी दिल को तसल्ली मिली। उसके बाद हम गए तपोवन, वहाँ मेरे को बड़ी खुशी मिली देख के कि कितनी लार्ज स्केल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है और कई फार्मर्स को ये सिखाई भी जा रही है, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर टूडेज, इट्स अ नीड ऑफ द डे। उसके बाद किचन देख के भी मैं बहुत ही खुश हुई कि इतनी हाइजीनिक वे से 30,000 लोगों का भी खाना बन रहा है, ह्यूज कुकर्स, वेरी गुड वॉशिंग मशीन्स, एवरीथिंग, इट वॉज परफेक्ट। यहाँ आके दो सेशंस जो मैंने बहुत एंजॉय किए, एक डॉक्टर प्रेम का एंड प्लस दोस टू लवली गर्ल्स हु डांस्ड अलोंग विद हिम एंड दे मेड अस ऑल हैव अ स्माइल ऑन आवर फेस। This is the need of the day. I think this is also spirituality. If you can make someone laugh, you laugh, people laugh with you. You cry alone. So this is the motto which I have brought in my life. And I think I'm a happy soul. So that's what I feel. This is also spirituality. Another thing which I really liked was Usha Behan's sessions. She had little stories for everything that she was telling us. Choti choti kahaniyan unhone boli. Wo kahaniyan mere man se kabhi nahi jayengi. Isliye un kahaniyon se main un cheezon ko relate kar paungi jo wo hame batane ki koshish karengi. That's all. Thank you.
Bahut bahut shukriya. Om Shanti. मेरा नाम भुवनेश वोरा है. आई एम फ्रॉम अहमदाबाद. आई एम वर्किंग इन एन प्राइवेट एमएनसी कंपनी. मेरी जर्नी अगर बोलूं तो 10वीं की एग्जाम पास करके जब हम दोस्त लोग फ्री बैठे थे तो मेरे एक दोस्त के पिता ने बोला, जो डॉक्टर थे, कि तुम लोग ब्रह्म कुमारी के सेंटर में जाओ. तो मैं और मेरा दोस्त दो दिन गए सेंटर में और तीसरे दिन नहीं जा पाए. शायद परमात्मा की इच्छा होगी और उन्होंने बोला होगा, बच्चे अभी तू तैयार नहीं है. तो ऐसे ही टाइम बीतता गया और सबको पता है कि कोविड आया. कोविड में जब हम वीडियोस ज्यादा देखते थे, रील्स देखते थे, सब चल रहा था, तब फिर से अचानक हमारे शिवानी दीदी का प्रवचन हम सुन रहे थे और उसमें से फिर से आत्मा परमात्मा की जानकारी चालू हो गई. तो तब जब फ्लैशबैक में गए तब पता चला कि 30 साल पहले जो मैंने जर्नी चालू की थी वो दो दिन में खत्म कर दी थी और शायद परमात्मा की फिर से इच्छा हो कि मैं इसमें जुड़ूं. तो डे बाय डे कोविड के बाद भी अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज वो वीडियोस देखते रहा और हर एक वीडियो में से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके छोटे छोटे सॉल्यूशंस मिलते गए और उससे पता चलता गया कि लाइफ में कैसे ग्रोथ और सक्सेस मिलती गई. और फिर से अचानक परमात्मा का बुलावा आ गया और आज 30 साल के बाद मुझे फिर से मौका मिला इधर ज्ञान सरोवर में आके मेरे ज्ञान की जर्नी आगे करने का. तो हमको पता है, जैसे गाड़ी होती है, बैटरी डाउन हो जाती है तो हमको एक जंप स्टार्ट देना पड़ता है और जंप स्टार्ट के बाद गाड़ी फिर से अपने रूटीन में चल जाती है. तो आज ये 5 दिन का जो सेशन है मेरे लिए एक जंप स्टार्ट है और परमात्मा से मिलन करने का मुझे मौका मिला है और आगे मैं ये जर्नी कंटिन्यू करूंगा. ओम शांति. बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी यात्रा मंगलमय हो और बहुत अच्छे से आप इस यात्रा में चलते हुए औरों को जोड़ें, यही हमारी मंगल कामना है.
ओम शांति. मेरा नाम ममता गुप्ता है और मैं गाजियाबाद से आई हूं. ये मैंने पहली बार ही अटेंड करा है. हम नशा मुक्त भारतवर्ष पर लोगों को जागरूक करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में अपने सेमिनार्स लगाते हैं. यहाँ आकर मुझे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिले हैं कि जिससे मैं बच्चों को और अच्छी तरीके से अपने सेमिनार्स में, मतलब ये बातें रख सकूं और बच्चे नशे के प्रति आकर्षित ना हो. ये जो यहाँ आकर मैंने इस विषय में कभी सोचा भी नहीं था. मैं हमेशा बच्चों को कहती थी इसे छोड़ने के लिए योगा हम करें, मेडिटेशन करें, लेकिन अगर बच्चे धर्म से जुड़ जाएंगे, गॉड से जुड़ जाएंगे, तो उन्हें नशा छोड़ने में बच्चों को और बड़ों को बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी. ये मैंने यहाँ आकर जाना है. और एक प्रश्न मैं आपसे जरूर करना चाहूँगी जिसके प्रति मेरे मन में वो उठती है कि जैसे अभी कहा था हमारे अंदर, मतलब कितनी भी बीमारी हो, गंभीर बीमारी हो, हम कहें कि हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बिल्कुल ठीक हैं. ये मैंने यहाँ 2-3 बार सुना है टीचर्स से. और एक ये है कि अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में बहुत जबरदस्त दर्द हो रहा है या हमारा मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया है, हम सड़क पर पड़े हुए तड़प रहे हैं, कोई पूछ रहा है तुम्हें क्या हुआ है, तो हम उस समय में कैसे कह सकते हैं कि जी हमारे शरीर को दर्द हो रहा है, हमारी आत्मा को तो कुछ नहीं हो रहा है. तो मतलब हम उस समय में गॉड से कैसे इंटरेक्शन बना सकते हैं उस समय. बाद में तो ठीक है, हम थोड़ी देर में हॉस्पिटल चले जाएंगे, बना लेंगे, लेकिन उस समय के लिए मेरे मन में विचार उठ रहा था तो मैंने आपसे पूछ लिया है.
बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपके प्रश्न के साथ ही भ्राता सिंह जी की ओर चलते हैं, महेश भाई की ओर भी, कि आपके ऐसे अनुभव हैं जो इन्होंने कहा कि भाई इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इतनी तकलीफ है, बीमारी है, ऐसे में तो भगवान कहाँ याद आते हैं, वो तो तकलीफ ही खींच रही होती है। कैसे उस समय मदद ली जा सकती है और क्या सचमुच भगवान हमारी मदद में उस समय आते हैं, संक्षेप में?
ओम शांति। इतने जो सेशंस हम लोगों ने अटेंड किए, जिसमें जैसे अभी हम बात कर रहे थे योग, कई चीजों को हम कठिन शब्द बना देते हैं, समझने में मुश्किल होता है। जैसे आपने प्रश्न किया कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है उस समय हम कैसे भगवान को याद करें, यही प्रश्न है ना आपका?
बीमारी है, तकलीफ है या एक्सीडेंट हो गया है, उस समय कैसे कनेक्ट हो, परमात्मा की मदद मिले आपके अनुभव से?
सबसे पहले तो हमारा जो पहला लेशन हुआ है, हम कौन हैं, वो जानना। तो मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान हम सभी को मिला है। और आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा को याद, आज से लौकिक में मान लीजिए आपको कुछ हो गया तो आप किसी को फोन करते हैं ना घर पे मोबाइल से, हमको ऐसा ऐसा हो गया है, वहां सोचते हैं क्या? नहीं, क्योंकि संबंध है, क्लैरिटी है। तो ऐसे ही परमात्मा, भगवान जिसे आप कहते हैं, वो कौन है? वो मेरा पिता है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा सर्जन है। तो उसको बताने में हमको मुश्किल नहीं लगना चाहिए। तो ये जब थोड़ा हम प्रैक्टिस करते हैं, इस चीजों को हम चिंतन में लाते हैं, तो आदत पड़ जाती है, कोई भी बात हुआ तो हम उसको याद कर सकते हैं, उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ बहन जी?
परमात्मा के साथ हमारे संबंध जैसे प्रगाढ़ होते जाएंगे, उनकी मदद हम जरूर प्राप्त करेंगे। आपको सफलता के बहुत सुंदर सुंदर सूत्र मिलने वाले हैं अंत में, इसीलिए आप बिल्कुल अपनी कुर्सी के साथ जमे रहें, क्योंकि बहुतों के प्रश्न ये भी हैं कि सफलता बहुत परिश्रम करने के बाद भी हमें नहीं मिलती है। उसके सार में सूत्र हम अंत में लेंगे अपने तीनों ही अनुभवी वक्ताओं से, लेकिन उससे पूर्व एक जो प्रश्न आया है, फिर आपके अनुभवों की ओर पुनः चलेंगे। मैं आदरणीय सुवन बहन जी से चाहूंगा कि इसका उत्तर दें कि क्या ये सच है कि ब्रह्मा कुमारीज में हस्बैंड वाइफ को भाई बहन बना दिया जाता है? और ये भी एक प्रश्न है कि मैं शिवरात्रि से 2023 से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हूं, पवित्रता की बात चल रही है, लेकिन गृहस्थ में रहकर पवित्रता का पालन कैसे करें, जबकि हिंदू धर्म में तो सभी देवी देवता, चाहे वो शंकर पार्वती जी हैं, श्री राम सीता जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, ये सभी भी तो गृहस्थ में दिखाए जाते हैं, तो पवित्रता को कैसे गृहस्थ व्यवहार में लाएं, ये कितना तर्क संगत है? सुमन बहन जी,
एक्चुअली पवित्रता तो बहुत गहरी बात है, और यहाँ ब्रह्म कुमारी इसमें ब्रह्मचर्य की बात तो हम करते ही है। क्यों करते हैं? क्योंकि जितना ऊंचा लक्ष्य, डिसिप्लिन भी उतना सख्त होता है। अगर एथलीट्स को देखेंगे, अगर बहुत ही ऊंचे स्तर के जो इंटरनेशनल लेवल के जो एथलीट्स देखते हैं, स्पोर्ट्स पीपल देखते हैं, उनके लाइफ में डिसिप्लिन भी उतना ज्यादा है, तो उसके कारण से ही वहां तक पहुंचे हैं। कोई भी क्षेत्र क्यों ना ले, हर क्षेत्र में जो भी ऊंचाई तक पहुंचे हैं वो उनके लाइफ में डिसिप्लिन बहुत सख्त है। अगर हम स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो ये डिसिप्लिन हमें अपनाना होगा। ये कंपल्सरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका लक्ष्य ऊंचा है तो फिर आप अपना सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि नहीं, मैं अपने लाइफ में नहीं कर सकता हूं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस मार्ग को अपनाने से आप ये प्राप्त कर सकते हैं। और ये रही जो पवित्रता, अगर अगर देखें सतयुग में, सतयुग में देवी देवताएं थे और फिर भविष्य में फिर से वो सतयुग आने वाला है, वहां फिर प्रोजनी कैसे होने वाला है, वहां पवित्रता के आधार से बच्चे पैदा होंगे कैसे, क्योंकि दृष्टि के आधार से वो अलग ही मैकेनिज्म होगा। जिस रीति से कलयुगी दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं वो अलग है, और जिस मैकेनिज्म से सतयुग में बच्चे पैदा होते हैं वो मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है, पवित्रता के आधार से है। तो ऐसी दुनिया अगर हम लाना चाहते हैं तो वो पवित्रता यहां ही हमें धारण करने की जरूरत होगी। और दूसरी बात है, ब्रह्मचर्य को अपनाने से हम बहुत सारे शक्तियां हम अक्यूमुलेट करेंगे, अपने स्टोर कर डिपॉजिट कर सकते हैं। बहुत नष्ट होता है अपवित्रता को अपनाने से, बहुत जल्दी, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा शक्ति नष्ट होता है अपवित्रता से। तो इसीलिए अगर हम बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते हैं तो पवित्रता को अपनाना बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं सुख शांति की जननी पवित्रता है। पवित्रता के बिना सुख शांति इस संसार में नहीं ला सकते हैं। पवित्रता हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का फाउंडेशन है, आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता।
जी सिंह जी,
इस प्रश्न को जनरल ये लोगों का कंप्लेन होता है, ब्लेम होता है ब्रह्मा कुमारी के ऊपर, लेकिन मैं इसको इस रूप से कहूंगा, ब्रह्मा कुमारी में आने के पहले आप मंदिर में जाते थे, सभी जाते होंगे, गए होंगे, और एक कॉमन प्रेयर पति भी कहता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पत्नी क्या बोलती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, वो भी यही बोलती है। दोनों ने मात पिता किसको कहा, हाजी उसी को कहा ना, उसी मूर्ति को कहा कि अलग मूर्ति उनके लिए अलग था, उसी को कहा। तो आपने ही कहा कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, इन्होंने भी कहा कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो हम आपस में क्या हो गए, तो हम तो आप जो करते आए हैं कहते आए हैं उसी को याद दिलाते हैं, हम कुछ नया बात नहीं करते हैं, हंसी की बात।
हमारे सभी वेद शास्त्र पवित्रता की महत्ता से भरे हुए हैं, ये हम सब जानते हैं, क्यों ना कुछ समय ये अवश्य करके देखें और ये कैसे जीवन में परिवर्तन लाता है उसका भी अनुभव करें। जब यहाँ के हजारों लाखों भाई बहने घर गृहस्थ में रहते हुए ये कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, एक शुरुआत जरूर करें। अनुभव के लिए मैं आमंत्रित करूंगा, एक मिनट में अपनी बात, अपना अनुभव रखेंगे, पश्चात जो प्रश्न मैंने कहा था सफलता के सुंदर सूत्र की ओर चलेंगे और उसके साथ संपन्न करेंगे।
ओम शांति, आई एम ए पीसफुल सोल, और इस लौकिक शरीर में मेरा नाम नीतीश है, मैं LNT के लिए काम करता हूं। व्हेन आई केम हियर फॉर जस्ट फॉर चेंज, चेंज इन वेदर, चेंज इन प्लेस एंड सॉर्ट ऑफ वेकेशन काइंड ऑफ थिंग, but I never realized that this change is going to change me. So I'm returning as a changed person, and I'll say not only I have changed, I'm getting transformed. It's a life-changing experience I'm having. I'll just share two lines. Earlier I was just thinking ki jeena bhi ek kala hai, isse jaane bina jeene tu chala hai. This place has taught me how to live life peacefully, happily. Om Shanti.
Om Shanti. मुझे इंग्लिश तो नहीं आती, पर बाबा हिंदी आती है। तो मुझे यहां अनुभव मिला है कि भगवान के पास, मेरे मगज में पैसे पहले ऐसा था कि भगवान के पास जाने का रास्ता ये मंत्र तंत्र से होता था, पर मैंने यहां ऐसा लगा, अनुभव किया कि भगवान के पास जाने का एक खाली मेडिटेशन के जरिए नजदीक जाने का एक सरल रास्ता यहां से अनुभव मुझे मिला है। और मैं एक प्रश्न वही करूंगा कि हमारे फार्मर के लिए आप कोई ऐसा कोई कार्यक्रम रख सकते हो? बस इतना ही, थैंक यू
जी। कार्यक्रम तो आप जहां से भी आए हैं वहां सेवा केंद्र पे इस प्रकार के कार्यक्रम भी होंगे, आप वहां जरूर जाएं। आपकी जो भी क्वेरीज हैं सेवा केंद्रों पे हमारी बहनें समर्पित रूप से हैं, वो आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगी और इस ज्ञान मार्ग में आपको आगे बढ़ने में भी मदद करेंगे। तो आप सेवा केंद्र से जरूर जुड़ें, वहां अवश्य जाएं जी।
ओम शांति। मेरा नाम विवेक अग्रवाल है, मैं गोदावरी पावर इस्पात लिमिटेड में चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर हूं रायपुर। महेश जी हमको यहां लेकर आए हैं बहुत बड़ी टीम को रायपुर से। 30 घंटे करीब करीब हो गए ये सब सेशन अटेंड करते, बहुत सारी चीजें सीखी। मैं दो चीजों पर ध्यान देना चाहूंगा, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। सबसे पहला चीज तो जितने भी वर्कशॉप आज तक हम अटेंड किए हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, वहां हम देखते हैं कि खाने में नॉन वेज रहता है। और मैं ये सोचता हूं कि जब हम कहीं भी शमशान घाट जाते हैं किसी की अंत्येष्टि करने, तो आके घर में नहाते हैं, हाथ धोते हैं, जल छिड़कते हैं, लेकिन जब हम नॉन वेज खा के लोगों के बीच घूमते हैं अपने पेट के अंदर शमशान घाट बना के, और यहां जब देखा कि शुद्ध शाकाहारी खाना, ये मेरे को वाकई काबिले तारीफ लगा। हर जगह ये होना चाहिए और पेट को हम शमशान घाट बना के न घूमें। दूसरा चीज यह है कि अब बहुत सारी चीजें सीखी शिवानी बहन को, तो हम फॉलो करते हैं। हम इसको अगर कंक्लूड करें तो अब यहां से जब हम जाएं तो जितनी भी नेगेटिविटी यहां छोड़ के एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट पर्सन बन के निकलें कि मैं एक पावरफुल सोल हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं। और अपनी डायरी में जो उन्होंने बोला लिखना है, ये नहीं कि अरे क्या होगा, आप जाएंगे तो बारिश होगी, ट्रेन लेट होगी, फ्लाइट लेट होगी, नेगेटिविटी बिल्कुल निकाल के कि सब कुछ अच्छा होगा, विद दैट माइंड सेट इसको कंक्लूड करें और एक अच्छी पर्सनैलिटी बनके उभरें। मेरे को यही बोलना था, थैंक यू वेरी मच।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर चीज आप लेके जा रहे हैं, ये ज्ञान धन, ये अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है जी।
ओम शांति। मेरा नाम प्रेमल त्रिवेदी है, मैं अहमदाबाद से आया हूं। एक प्राइवेट कंपनी में मैं 35 साल से काम करता हूं। मैं मेरी जिंदगी में जैसे स्वामी विवेकानंद ढूंढते थे ना कि आपने भगवान को देखा है, मुझे दिखाओगे, वो ही कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे ध्यान में बैठना है, कोई मुझे सिखाएगा, वो जवाब मुझे यहां से मिला है। धन्यवाद।
एक या दो बस लास्ट में। हाँ सिस्टर, आप और भैया।
ओम शांति। अभी जैसे रूपेश भाई ने ऐसा टर्म कंडीशन डाल दिया है कि सागर को गागर में समाना है। रूपेश भाई जी, मैं 28 फरवरी 2017 में बिजनेस विंग से निकला हूं, आज मैं गाइड बन के आया हूं। सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें जिज्ञासा तो होना ही चाहिए। जैसा कि मैं घूमने के लिए आए थे बिजनेस विंग में, मैं ब्रह्मा कुमारी को नहीं जानता था, जैसा मैं यहां पे घूमने के लिए आया, हमने फोटो ही निकाला, जहां जाओ वहां फोटो निकालने का ही मन करता है। मगर फिर भी एक दिन ऐसा हुआ कि चलो एक आधा क्लास तो सुने, हमने उषा दीदी का एक क्लास सुना। मैं महाराष्ट्र से आया हूं, ठाणे से, घोड़बंदर रोड सेंटर। हम बिजनेसमैन हैं तो मैंने सोचा कि चलो एक क्लास कर लें, बाकी और भी अपन फोटो बहुत निकालेंगे, गैलरी फुल होगी, इतना फोटो निकाला। फिर मैंने उषा दीदी का एक क्लास सुना कि बिजनेस के साथ फैमिली को कैसा मैनेज करना है। उनका ऐसा शब्द तीर लग गया कि सारा क्लास कंपलसरी करना पड़ा और जाके तुरंत घोड़बंदर पे सेंटर पे मेरे को तुरंत ही कोर्स 7 दिन का करना पड़ा। और आज 7 साल हो गया कंटिन्यू मुरली क्लास, और बाबा ने तो इतनी हेल्प की है, मुझे गीता पाठशाला बाजू में खोल के दिया है, अभी गीता पाठशाला फुल हो गया,
बहुत
मुझे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। थैंक यू,
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब भी जाके कोर्स करने वाले हैं और ऐसे ही आगे गाइड बन करके यहाँ औरों को लेके आने वाले हैं, राइट? ऐसा कौन कौन करने वाला है? ऐसा ही करेंगे ना? बहुत सुंदर, शुक्रिया जी। हाँ, ये लास्ट है अनुभव के लिए।
लास्ट यहाँ का अनुभव मैं कहूँ, मुझे इतना अच्छा लगा, पूरा दैवीय अनुभव है यहाँ पे। हम कहते हैं कि धरती पे सतयुग आ जाए, रामयुग आ जाए, और यहाँ वाकई रामयुग है, ये सतयुग ही है। यहाँ के हंसते मुस्कुराते चेहरे, जब हम खाने के लिए जाते हैं वहाँ जितने लोग खाना जो हमारे सेवा में लगे हुए हैं वे सब हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं। यहाँ कोई लेन देन नहीं है, यहाँ सिर्फ देना ही देना है, जो कि हमें यही सिखाते हैं कि आप देने का भाव रखो। और यहाँ से हम ये सीख के जा रहे हैं और इसके साथ ही बहुत कुछ सीख रहे हैं। मेरा जो अनुभव रहा, थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हुई, अभी मेरी सासू माँ भी साथ में आई हैं, उनकी भी थोड़ी तबीयत गड़बड़ हुई, हम उन्हें लेके गए दिखाने के लिए, डॉक्टर ने इतने प्यार से देखा और बाबा का इतना आशीर्वाद मिला, और यहाँ दवाइयों के लिए पूछा गया, नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ सेवा भाव है। तो इसके लिए मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि मैं इतने सुंदर जगह पे आज आ पाई हूँ, तो बहुत 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 धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया बहन, मैं जानता हूँ सबके मन में बहुत उद्गार है, बहुत कुछ कहने के, और सचमुच यहाँ से हृदय में जो भर के जा रहे हैं वो सचमुच काबिले तारीफ है, इसे अप्लाई जरूर कीजिएगा। एक लास्ट, भले आप भैया बोल रहे हैं तो लास्ट एक भैया को दे दे।
तीस सेकंड लूंगा सिर्फ। सर्वांनी अनुभव सांगितले, छान सांगितले, बहुत अच्छा बताया, पर मुझे यहाँ पर एक ही अनुभव आया, जो हिंदुस्तान जब से समझ में आ रहा है वो जो बेड़ियों में पकड़ा हुआ है जाति के, वर्णों के, यहाँ पर मुझे समझ में आया कि ब्राह्मण होना क्या है। ब्राह्मण यह जाति नहीं बल्कि वह एक गुण धर्म है, और मैं वो आज सीखकर यहाँ से जा रहा हूँ। इतना बहुत अच्छा मार्गदर्शन यहाँ मिला, मैं सभी का आभार मानता हूं और सभी आत्माओं को शुभेच्छा देता हूं।
बहुत बहुत शुक्रिया।
ओम शांति। मैं रमेश तिवारी, छत्तीसगढ़, रायपुर राजधानी के बाजू में एक छोटा सा कस्बा है, महेश भैया के इंस्पिरेशन से मैं आया हूं। मैं बस इतना ही एक प्रश्न जिज्ञासा स्वरूप थी मेरे मन में कि इतने अच्छे संस्था में आने का मौका, मानसिक परिस्थितियों से प्रताड़ित होते हुए मैं 2014 से संघर्ष कर रहा था, और मैं कभी ब्रह्म कुमारी की ओर अग्रसर नहीं हुआ था। 15 दिनों पहले ही ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि मुझे करीब जाने का मौका मिला, तो मैं ये महसूस नहीं कर पा रहा हूं कि ग्रह नक्षत्रों का परिवेश होता है कि क्या होता है। जैसे यहां सेशन में सुना तो नहीं, कर्मों के आधार पे ज्ञान को आप आगे बढ़ाओ, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ये 10 साल का समय जो खोया आज यहाँ आने के बाद में, मुझे कुछ ज्ञानवर्धन हुआ, तो मुझे उस संघर्ष से बहुत तकलीफ हो रही है कि 10 साल पहले अगर ये परिस्थितियाँ मेरे पास आई होती तो शायद मैं अपने जीवन में कुछ और उत्थान कर लिया होता। तो क्या ये ग्रहों का भी दोष होता है? यही बस आप बुद्धिजीवी से जानने की इच्छा थी।
चलिए, इसका उत्तर आपको मिलेगा जरूर, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि बिल्कुल जिस बात को लेकर हमने प्रारंभ में भी कहा, एक एक शब्द या एक एक लाइन में अपने तीनों विद्वान हमारे जो वक्ता राजयोगी बैठे हुए हैं कि जीवन में सफलता का सूत्र क्या है, शिखर पर कैसे पहुंचें, चाहे वह अध्यात्म है या हमारा भौतिक जगत, चाहूंगा एक एक लाइन में अपने जीवन का निचोड़ निकालकर हम सबके साथ बांटें। आदरणीय सुमन बहन जी, अच्छा चलिए महेश भाई से शुरुआत करते हैं। महेश भाई जी।
ओम शांति।
ये मेरा बहुत गहरा अनुभव रहा है कि जीवन में सफलता के लिए तीन चीजें हैं जो मैं बचपन से अनुभव करते आ रहा हूं, चाहे लौकिक जीवन में रहा चाहे अलौकिक जीवन में। कभी भी मेरा पुराने से नया एक कदम आगे ही रहा, पीछे नहीं रहा, हर तरह से, चाहे वो मानसिक स्थिति से हो, आर्थिक से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हम आगे ही बढ़ते रहे। उसका तीन आधार है मेन। एक तो ऊपर वाले का साथ, ईश्वर का अगर आपका साथ है तो सफलता के लिए कोई रोक नहीं सकता। दूसरा बड़ों की दुआएं, और तीसरा स्वयं का पुरुषार्थ। इन तीनों में अगर कोई कमी है तो ही असफल हो सकते। अगर ये तीन चीज हैं तो कोई कभी असफल हो नहीं सकते।
ओम शांति। ये प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है, सभी बिजनेसमैन को ये चाहत होती है। मैं अपने एक अनुभव से बताऊंगा शॉर्ट में कि इसमें कैसे सफलता मिली। जब मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ा तो हमारे यज्ञ की वरिष्ठ दादी जी, दादी गुलजार जी से एक बार मिलना हुआ, और उस समय मैं कई परिस्थितियों से जूझ रहा था। तो दादी को मैंने बताया, दादी ऐसे ऐसे मेरे पास समस्या है, तो दादी ने कहा एक अच्छा पार्टनर ढूंढो। तो मैं, मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो दादी ने पूछा सबसे शक्तिशाली कौन है। तो थोड़ा ज्ञान था, मैंने कहा परमात्मा, तो उसको पार्टनर बना लो। तो पार्टनर के साथ क्या होता है, कोई भी काम करना है तो पहले पार्टनर को पूछते हैं, ये करना है वो करना है, कोई डील हो गई तो पार्टनर को बताते हैं ना, तभी तो भागीदारी चलती है। ये मैंने शुरू किया तो बड़ा अच्छा लगा। कुछ भी हम बाबा के कमरे में जाते थे, बाबा का फोटो है, बाबा को याद करके हम कहते थे, करते थे, इजी लगने लगा, हल्का हो गया। थोड़े समय के बाद ये आया कि पार्टनर को खाली मैं अपना रिजल्ट शेयर कर रहा हूं, कोई तकलीफ है वो बता रहा हूं, मैं पार्टनर के साथ और कुछ तो नहीं कर रहा हूं, पार्टनर को तो वो भी देना पड़ता है ना। तो हमने हमारे कारोबार में एक सिस्टम बनाया कि जब भी हमें कोई पेमेंट भी आता था तो सम परसेंटेज उसी समय पार्टनर के नाम से बना करके यज्ञ डाल देता था। तो ये हमारे सफलता का राज है।
बात कर रहे सुमन बहन जी,
सफलता पाना बहुत सहज हो जाता है जब निश्चय होता है। एक है परमात्मा में निश्चय और दूसरा है खुद में निश्चय। क्योंकि परमात्मा में निश्चय डगमगा क्यों जाता है, क्योंकि कई बार प्रश्न उठता है क्या भगवान मुझे सचमुच मदद करेंगे। तो यहाँ हम कहते हैं परमात्मा मेरे लिए फ्री बैठे हुए हैं, है ना, तो जरूर वो 24/7 मेरे लिए अवेलेबल है। तो इसीलिए उनमें निश्चय, परमात्मा में निश्चय रखते चले, और खुद में कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकती हूँ, बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ नहीं, लेकिन मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ कि मैं जरूर कर सकती हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और तीसरी बात है हर रोज रेगुलरली करना, क्योंकि अगर हम 15 दिन छोड़ देते हैं, एक मास छोड़ देते हैं, तो फिर वो डिसकंटिन्यूएशन आ जाता है। तो पत्थर पर लगातार बूंद के पानी टप 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 होता है तो वहाँ एक खड्डा हो जाता है, लगातार वो पानी वहाँ गिरी तो इसके लिए वो पत्थर भी पिघल जाता है, पत्थर भी अपना शेप बदल देता है। ऐसे लगातार हम प्रैक्टिस करेंगे हर रोज, भले आप ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे लेकिन एटलीस्ट 20 मिनट तो निकाल ही सकते हैं 24 आवर्स में से, तो 20 मिनट भी हर रोज अगर करेंगे आप देखेंगे जितना कितना भी अगर असंस्कार कड़ा है वो भी पिघल करके परिवर्तन जरूर हो जाएगा। तो इसीलिए लगातार करने की जरूरत है।
बहुत बहुत शुक्रिया सुमन बहन जी। हम अपने तीनों पैनलिस्ट के लिए जोरदार तालियां बजाएं और धन्यवाद अर्पित करें जिन्होंने इतने सुंदर हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। और आप सभी का दिल से भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत प्यार से प्रश्न भी किए, अनुभव भी साझा किए, और साथ ही जो आपको मिला है उसे अपने हृदय में समाकर जीवन में लाने के संकल्प के साथ यहां से जाएंगे, ऐसी हमारी शुभ भावना और शुभकामना है। कहते हैं ईश्वर का हाथ पकड़ लो तो किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चले अंत में ईश्वर पिता का हाथ पकड़ लें इस संकल्प के साथ कि हमने जो यहां से पाया है आपकी याद में आपके साथ रहते हुए हम उसे जीवन में अवश्य अमल में लाएंगे, दिल से उन्हें शुक्रिया करेंगे। चलें एक मिनट परमात्मा की याद में। ओम शांति।